け。
ॐ शांति, ॐ शांति। आज रविवार है, प्यारे प्यारे आवेग बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और आज तो बाबा अपने प्यारे बच्चों की सभा को देख रहे थे। बाबा ने देखा कि कोटों में कोई, कोई में कोई बाप को पहचाना है और बाबा के बच्चे कितने प्यारे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप ने दो प्रकार के बच्चे देखे, एक तो सभी बच्चे लवली बच्चे हैं, बाबा को सब बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, और दूसरा कुछ बच्चे ऐसे थे जो लवलीन थे। फिर बाबा ने कहा कि जो लवलीन बच्चे हैं उनकी निशानियां क्या है, अगर लवलीन स्थिति नहीं है उसका कारण क्या है, कोई ना कोई लीकेज है, मेहनत करते हैं, वो भी बाबा ने बताया है। और बाबा ने कहा कि जैसे आजकल कोई भी प्रोग्राम करना होता है तो उसकी रूपरेखा तैयार करते, रूपरेखा में तैयार करेंगे, तो बाबा ने कहा कि अभी कौन सी रूपरेखा तैयार करनी है, स्नेह और सहयोग की, तथा गुण और शक्तियां दान करना है, स्नेह और सहयोग की रूपरेखा तैयार करनी है, गुण और शक्तियां दान करना है। तो आज बाबा ने अपने बच्चों के ऊपर बहुत प्यार बरसाया है, बाबा ने प्यार की बरसात बरसाई और इंद्रदेव भी आपसे खुश है और वो भी अमृत वेले से लेकर के धमाधम अच्छी तरह से आपका भी स्वागत कर रहा है। सब ठीक है ना, बरसात में ऊपर आने में कठिनाई तो हुई ना, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि पानी है, थोड़ा संभल करके चलना है। जब आए तो ध्यान से आए, नहीं भी आ सकते ना तो हिस्ट्री हॉल में भी मुरली सुन सकते हैं, लेकिन देख करके अपने शरीर को संभाल करके और कदम संभल संभल करके रखना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 22 जून 2025 और रिवाइज मुरली की डेट है 15 दिसंबर 2005। मुरली का मुख्य हेडिंग अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक गुण को, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से भी कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्म प्यार, पहले पॉइंट कि ये परमात्म प्यार कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। दूसरा, ये परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार। दुनिया का प्यार तो देखते कितना स्वार्थ बना होता है, तो बाबा कहते हैं ये परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार और निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ जाती, कितना भी कि हमारा स्वार्थ नहीं है लेकिन कोई न कोई कैसे भी करके आ जाती है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ जाती हैं। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जीए दान परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार और ब्राह्मण जीवन का जीए दान है। अरे ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं सूखा जीवन हो जाता। ब्राह्मण का जीवन देखो सदा रमणीकता में हंसते खाते गाते पीते चलते फिरते रहते ना। तो बाबा कहती हैं अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं सूखा जीवन हो जाता है। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ देता और साथी बन सदा सहयोगी रहे। कितनी प्राप्तियां हैं जीवन में साथ देता और साथी बन सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है साथ है वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता ऐसा अनुभव है ना। हाँ सुबह अनुभव करते बाबा साथ है बाबा ही कार्य करा रहा है बाबा ही करने वाला है हम तो केवल निमित्त है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव है ना परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति वह साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते। कितनी बातें बाबा बता रहे हैं क्योंकि परमात्म आकर्षण परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है परमात्मा में लीन नहीं होता। बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं परमात्मा में लीन नहीं होते परमात्म प्यार में होते ना। परमात्मा में लीन नहीं होता लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। जो लवली बच्चे हैं वो तो बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। लवली बच्चे संभाल रखो लवली है ना बाबा को प्यारे हैं। अच्छा आप बाबा देखेंगे लवलीन कौन है लवलीन वाले भी हाथ उठाओ सभी है ना ठीक है। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं लेकिन एक है लवली बच्चे दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो लवली तो सभी हैं लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते। सब लवली है लेकिन लवलीन स्थिति में कहाँ तक रहते हैं। लवलीन बच्ची कोई निशानी है वह सदा परमात्म परमान में सहज चलते। अब लवलीन बच्चों की निशानी पहला वह लवलीन बच्ची की निशानी वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं। फरमान में भी रहते और देह भान से कुर्बान भी रहते। जो लवलीन स्थिति है फरमान को भी फॉलो करते और देह अभिमान में भी कुर्बान रहते क्योंकि परमात्म प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भाव पवित्र भाव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों की मेहनत को देख नहीं सकते क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की है। अब ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अति इंद्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो ना, मना रहे हो ना मौज, हर समय देखो मौज ही मौज है। आज ये है, आज ये प्रोग्राम है, आज ये है, बाबा के घर में आज ये मिलेगा, खुशियों में नाचते हैं। जो मौज मना रहे हैं बाबा को हाथ उठा के बता देंगे, है ना। कभी मन में थोड़ी सी बातें नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो मौज मना रहे हो या मेहनत करनी पड़ती है, प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार के परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज। अब सुनो, मेहनत करते हैं प्राप्ति नहीं होती है, तो बाबा ने कहा एक तो प्यार की परसेंटेज कम है, दूसरा प्यार में कहाँ न कहाँ क्या है, लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, कौन कौन से लीकेज है, एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाते। पूरा पहला है लीकेज, पुराने संस्कार की आकर्षण संबंध और सब पदार्थ साथ आ जाते हैं। और दूसरा है पुराने संस्कार के आकर्षण। ये पुराना संसार और पुराना संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे। कभी कहते हैं ना पुराने संस्कार है बाबा क्या करें, बाबा कहते चेक करो आदि और अनादि संस्कार क्या थे। चेक करो इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या हैं। और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं, अनादि भी हैं आदि भी हैं और अंत में भी शेष संस्कार हैं। ये पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि है ना आदि है, शुरू से लेकर अंत तक शेष संस्कार है। लेकिन बाबा कहते पुराने संस्कार जो है द्वापर से मध्य में आए, ना आदि के हैं ना अंत के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है, किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना, तो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा अगर ये लक्ष्य है कि हमको बाप समान बनना है तो हाथ उठाओ, यही लक्ष्य है पक्का। सबने हाथ उठाया, फिर बाबा क्या करते पक्का कराते, ऐसा नहीं है सबने हाथ उठाया एक ने देखा देखी उठा लिया। तो बाबा हमेशा कहते थे पक्का करो, पक्का है ना, या बीच बीच में बदली हो जाता है। पक्का लक्ष्य तो रखा है लेकिन संस्कार आ जाते हैं, फिर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से। बाप दादा समान बनने ना, तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बाप बच्चों से पूछते हैं बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित रहे हैं, तो हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो, सहयोग दे तो सहयोगी बने। आमतौर पर ही होता है, ये तो कोई सहयोग नहीं देता, हम क्यों इसको मदद करें, सहयोग देगा तो हम देंगे। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, बाबा ने कभी सोचा नहीं है कैसे तो नहीं ना कि सहयोग दे तो सहयोगी बने, नहीं स्नेह दे तो स्नेही बने, नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी रहे, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है। बाबा क्या बता रहे हैं, हर बच्चे को क्या करना है, स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है बाप समान बनना। अगर कोई भी बच्ची को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। कहीं कहते हैं बाबा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाबा ने क्या किया, मेहनत नहीं की, अटेंशन रखा। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, मेहनत नहीं की, संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली तो बने हैं लेकिन लवली नहीं बने। संस्कार क्यों नहीं परिवर्तन होते, लवली तो सब अच्छे हैं लेकिन बाबा कहते लवली नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्ची को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर क्या कहेंगे। बाबा तो हर एक बच्चे के स्वभाव संस्कार उसके पुरुषार्थ सबको जानते, बाबा थोड़ी कहेंगे तुम्हारा स्वभाव ऐसा, फिर क्या कहेंगे। बाप दादा हर एक बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, चाहे जानते हैं कि ये लास्ट नंबर का है फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में नहीं रखते हैं। लाडला है, सिकीलवा है, मीठा मीठा है, तो क्या हो बताओ। बाबा के पास बच्चे आते थे ना, बाबा हमेशा कहते मेरे लाडले बच्चे, यार प्यार में क्या कहते, सिकीलवा है, मीठे मीठे। तो बाबा ने क्या कहा, लाडला है, आगे बोलो, सिक्की लगा है, मीठा मीठा है। तो बाबा हमेशा याद प्यार कैसे देते, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चे कहते ना, तो बाबा जानते हैं लाडला है, सिक्की लगा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर भी महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति की, जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से कल्याण की भावना से क्या परिवर्तन नहीं कर सकते हो। बाबा कहते प्रकृति जीत तो बनते हो लेकिन आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना शुभ कामना से क्या परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अभी नया वर्ष शुरू होने वाला, क्योंकि 15 दिसंबर की है ना, तो 15 दिन के बाद नया वर्ष होगा, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपनी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन में सहयोग दो, सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो कि इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बन। बाबा के पास जब बच्चे आते थे तो बाबा को पता होता था इस बच्चे के अंदर ये कमजोरी है, ये कमजोरी। बाबा कभी भी इसकी कमजोरी का वर्णन नहीं करते थे, बाबा उसको ज्यादा प्यार करते थे। कई बार बहने सोचती थी बाबा इसने इतनी बड़ी भूल किया, ये किया है, आप बाबा इसको शिक्षा देंगे। बाबा पहले क्या करते, स्नेह देते थे फिर उसको शिक्षा देते थे, एकदम पहले शिक्षा नहीं देते थे। तो बाबा कहते स्नेह और सहयोग से उसको परिवर्तन करो। जानते हो इस संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। आते ना हाथ मिलाते, तो बाबा कहते कौन सा हाथ मिलाना, स्नेह और सहयोग का। तो बाबा बता रहे इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो। न्यारा भी नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो। क्योंकि आपका यादगार कौन सा है, विजय माला है। हर एक मणके के साथ ही सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं, बाबा नए साल में क्या करना है। तो बाबा ने कहा संदेश देने का कार्य तो बहुत किया है, कर भी रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के स्नेह और स्नेह की, बाबा कहते हैं संदेश देने का कार्य तो बहुत किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो और बनाओ। बाबा कहते ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उनों की कमजोरी को दूर करो। ये कर सकते हो ना, परमात्म गुण क्या और अपने गुण की शक्ति के द्वारा दूसरे की कमजोरी को दूर करो, ये कर सकते हैं ना, कर सकते हैं या मुश्किल है। बाबा पूछते कर सकते हैं या मुश्किल है। टीचर्स बताओ कर सकते हैं, टीचर्स बैठी है थोड़ी बट्टी के तो चली गई, कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा क्या कर सकते हैं या करना ही है, करना ही है, कोई कमजोर नहीं रहे। क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। अब माला का लास्ट दाना लेकिन है तो वैल्यूएबल ना, उस दाने के बिना माला भी पूरी नहीं हो सकती। तो बाबा कहते कोटों में कोई है लेकिन लास्ट दाना, लेकिन है तो दाना ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। क्या टाइटल, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है, शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। पहले बाबा ने कहा अपने गुण और शक्तियों का सहयोग दो, फिर बाबा ने कहा बाप द्वारा मिला हुआ गुण की आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देती है ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, ऐसे ही अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना ये समय पर गिफ्ट देना, नए वर्ष में गिफ्ट देते हैं और गुड विशेस कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कमजोर को सहयोग देना, ये समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ और ऊंचा चढ़ाओ। ये ऐसा है, ये ऐसा है नहीं, ये प्रभु प्यार के पात्र है। तो बाबा क्या बताते हैं, ये प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है, ये दृष्टि रखो। अभी क्या करना है, अभी वृत्ति दृष्टि और वायुमंडल चेंज करो, कुछ नवीनता करनी चाहिए। बाबा की हर बार वही वही है, तो उसमें कुछ नवीनता लाओ। अभी दृष्टि और वायुमंडल चेंज करो, कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते हुए भी देखो नहीं, उमंग दो और सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा क्या करेंगे, ऐसा ब्राह्मण संगठन हो जो अपने वृत्ति दृष्टि कृति के द्वारा सबकी कमजोरियों को दूर करे। तो बाबा कहते हैं ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा क्या करेंगे, बताओ। तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा, तो बाप दादा विजय की ताली बजाए। आप लोग तो ताली बजाते हो कोई भी बात होती है, लेकिन बाप दादा विजय की ताली बजाएंगे। आप भी तो बार बार तालियां बजाते रहते हो, कुछ भी बाबा कहेंगे अच्छी बात, ताली बजाते हैं। तो बाबा कहते आप तो बार बार तालियां बजाते रहते हो, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। अच्छा तो आप भी सभी क्या करते हो, बाबा के सामने बैठे, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही बच्चों की महिमा की, तो ताली बजाते हैं। तो बाबा कहते विजय माला का दाना बनेंगे, माला तैयार करेंगे, संगठन तैयार करेंगे, तो बाबा भी क्या करेंगे, मुबारक भी देंगे, ग्रीटिंग्स भी देंगे, ताली भी बजाएंगे, विजय की ताली बजाएंगे। बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएंगे। अब बाबा आपके लिए ताली बजाएगा, आप तो बाबा के लिए ताली बजाओ ना, बजाओ जोर से। बाबा हम तो ऐसा करे तो अच्छा, आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना, बोलो बजाएंगे, फिर से बजाओ, बाबा के साथ आप भी बजाएंगे ना? अभी ताली बजाए उसी समय जैसे मुरली चल रही थी, बच्चों ने ताली बजाई, तो बाबा कहते अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे। बाबा कहीं रुकने नहीं देते, ताली बजाए बहुत अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे। सबके मुख से ये आवाज निकले कि हमारे ईष्ट आ गए हैं, हमारे पूज्य आ गए हैं। लक्ष्य पक्का है ना, पक्का है लक्ष्य, या करना ही है, या देखेंगे, प्लान करेंगे, करना ही है। प्लान क्या, करना ही है। बाबा ने क्या कहा, प्लान करेंगे, ऐसा करेंगे, प्लानिंग प्लान्स बनाएंगे। बाबा ने कहा प्लान्स तो क्या, लेकिन करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इनों का इंतजार खत्म करो। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इनों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितना तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। देखो ना प्रकृति क्या खेल, कहा जोर से बारिश, कहा कुछ चल रहा है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा आजकल विश्व में दो विशेष बातें चलती, कौन सी चलती है बताएं। कल क्या किया आप सबने, कल है योगा डे था ना, क्या किया, क्या किया, एक्सरसाइज किया ना। आजकल विश्व में दो विशेष बातें चलती है, एक है एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो ना, अभी 21 जून आता है, सारे विश्व के अंदर योगा डे मनाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज पे जोर देते हैं और साथ साथ सात्विक भोजन पे भी जोर देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो आप भी ये दोनों बातें करते हो ना, आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शरीर की एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन ब्राह्मण लेकिन मन की एक्सरसाइज, शारीरिक एक्सरसाइज तो सभी करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ये मनसा दिल का अभ्यास सदा करते रहो और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। शुद्ध भोजन क्या है? मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन, नेगेटिव व्यर्थ कभी कभी बहुत हो जाता है ना। अगर व्यर्थ संकल्प, अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुभ संकल्प रहे, दोनों करना आता है ना, मन का एक्सरसाइज और मन का भोजन करना, शरीर की एक्सरसाइज और शरीर को शुद्ध भोजन देना। तो बाबा कहते दोनों करना आता है ना, जितना समय आप चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप की स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं और विजय में और सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। उसके बाद है प्यारी दादी जी से, दादी जी को कहा है, दादी जी से बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हैं, आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। दादी तो हमेशा ही इतना अच्छा पार्ट शुरू से बजाया, लास्ट में न्यारी भी थी प्यारी भी थी। फिर गुजरात का टर्न था तो गुजरात की मुख्य 13 बहनों से अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीर का काम है विजयी बन विजयी बनाना, महावीर का काम है विजयी बन विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं ना, आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा, गुजरात में फैला रहे हो और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे। बाबा के सामने गुजरात का, उस समय सेवा का टर्न गुजरात का था, तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है, अच्छा है, खुश और खुशी बांटने वाले। सरला दीदी थी उस समय, तो सरला दीदी ने पूछा, सरला दीदी पूछ रही है दादी ने माला में किसको रखा है। बाबा ने माला की बात की ना, तो दीदी को बहुत होता था माला में कौन कौन होगा। दीदी बहुत प्यार से माला के बारे में बहुत बहुत मनन करती थी, तो दीदी ने वो प्रश्न पूछ लिया। सरला दीदी पूछ रही है दादी ने माला में किसको रखा। अब माला तो बाप दादा बनाएंगे लेकिन दादियों के द्वारा बनवाएंगे, दादी ने माला में किसको रखा है, आप क्या समझती हो? बाबा ने पूछा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आप क्या समझती हो, हम तो होंगे ना, ऐसा समझती हो ना। अब बाबा ये नहीं कहते कौन कौन बनेंगे, हर एक ये सोचे कि हम भी माला के दाने होंगे, तो बाबा कहते ऐसा समझते हो ना, थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दो और जो कुछ भी रहा हुआ है वह भी खत्म हो जाएगा, सब बाप समान बनने वाले ही हैं। फिर बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा नवीनता क्या करें? तो बाबा ने सुनाया, कहा सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस को तैयार करे, कितना बड़ा काम है, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस को तैयार करे, तो इस वर्ष वह लेकर आना। फिर बाबा ने कहा इतना नहीं कर सकते ना, तो फिर बाबा कहते हैं 21 वारिस तो लेके आना, चलो ज्यादा नहीं कर सकते हो, कम से कम 21 वारिस तो ले आना, ये शुरू करो, पहला नंबर आओ, सभी हाँ कर रहे हैं, लेकिन वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हो? बाबा ने कहा वारिस तो क्या है, नया कोई VIP आएंगे कि वारिस ही आया VIP, लेकिन जो शुभ संकल्प अपने सब प्रकार के संकल्पों से बाबा को पहचाने और से अपनी दृष्टि वृत्ति से बाप की सेवा करे, पुरुषार्थ करे, तो बाबा कहती हैं वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हो ना, ये सब बाबा के ही बनाएंगे, अपना तो बनाएंगे नहीं ना, वारिस मीन्स वो बाबा का है, अपना नहीं। तो बार बार वो तो हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा है, हमारे सेंटर का है, हमारा ही है, तो बाबा कहते अपना नहीं बनाना, बाबा का बनाना है, पहला नंबर आओ, सभी हाँ कर रहे हैं, वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हो ना, ये सब बाबा ही बनाएंगे ना, अपना तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद बताया बाबा को, बाबा गुजरात की सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं, गुजरात वाले जो भी हैं, चाहे हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, गुजरात वाले यहाँ बैठे बहुत हैं, गुजरात की तो विशेषता है, दादी हमेशा कहती थी गुजरात जो है मधुबन का दूसरा कमरा है, बस ताली बजाओ ये सेवा की जरूरत है, तो बस वो पहुंच ही जाते थे, जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे दूर से सेवाधारी कहाँ आएंगे, दादी हमेशा क्या करती थी, सरला दीदी को फोन करती थी, सरला यहाँ पर ये प्रोग्राम है 20 सेवाधारी 50 सेवाधारी भेजो, और दीदी हमेशा हाँ करती थी, कभी भी दीदी ने किसी भी बात में ना नहीं किया, चाहे सेवा हो कोई भी कार्य हो, सरला दीदी ने कभी किसी बात में ना नहीं किया, यहाँ से भाई बहने जाते थे प्यार से रिसीव करती थी, उनकी पूरी खातरी, जब शुरू शुरू में साधन नहीं थे, ट्रेन में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, 100 की पार्टी है, 200 की पार्टी है, 500 की पार्टी है, सबके लिए चाय खाना स्टेशन पर वो पहुँचवाते थे, बहुत सेवा की, बहुत सेवा, दीदी ही एक स्ट्रांग थी, उसके कारण सारा गुजरात पूरा का पूरा संगठन की तरह चलता रहा। तो बाबा कहते गुजरात वाले जो भी हैं, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाया, बहुत है, बहुत अच्छा है, अच्छा चांस लिया है, गुजरात को तो बाप दादा कहते हैं, जैसे सिंधी में कहावत है जो चुल पर वह दिल पर, चुल समझते ना, चूल्हा, जो चूल्हे के नजदीक है, जो चूल्हे के नजदीक बैठा है, खाना रोटी बनाते गरम गरम, गरम गरम रोटी मिलती है, जो बिल्कुल नजदीक चूल्हे बिल्कुल पास में है तो दिल में है। तो बाबा कहते हैं कहा जाता है जो चूल्हे पर वो दिल पर, सो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है, तो जो नजदीक होता है ना उसको फिर सिंधी में दूसरा कहते षडपंथ, षडपंथ में जैसे कहीं से आए हैं यहाँ तक पहुंचे और वहां पहुंच रहा है, तो उसको कहते बिल्कुल आवाज लगाओ तो सामने वो दिखाई दे रहे। तो बाबा कहते हैं जो नजदीक होता है ना उसको कहा जाता है षडपंथ पर, बिल्कुल करीब, अब यहाँ बैठे सामने बैठे आवाज लगाए, आवाज लगाए कुछ भी किया इशारा किया तो समझ जाते हैं, बुलाओ और पहुंच जाए, तो गुजरात वाले भी ऐसे एवर रेडी है ना, कभी भी बुलाओ तो आ जाते, आ जाएंगे ना, हमेशा आते, अभी का अभी तक का रिजल्ट ये है, जब भी बुलाया दादी ने या अभी भी बुलाते हैं वो सब के सब टाइम पर पहुंच जाते हैं, कभी भी बुलाओ तो आ जाएंगे ना, ऐसे है ना। तो परिवार, तो बाबा कहते तो बाबा बच्चों की महिमा कह रहे हैं, परिवार को भी नहीं देखेंगे क्या करें, आ जाएंगे। दीदी बोलती थी सबको, दादी ने बुलाया है, भाई बहने इतने तैयार रहते, ये नहीं कहते दीदी आज घर में काम है, ये है परिवार की बात है। तो बाबा बता रहे हैं परिवार को भी नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, आ जाएंगे, एवर रेडी है ना। अच्छा, गुजरात साकार बाबा की प्रेरणा से स्थापन हुआ। साकार बाबा को बहुत संकल्प था, शुभ संकल्प था कि गुजरात में अहमदाबाद में सेंटर हो। तो वह अहमदाबाद गुजरात में प्यारे बाबा ने ही सेंटर खुलवाया था, सेवा आरंभ कराई थी। तो बाबा बता रहे हैं गुजरात साकार बाबा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, होता ना जहां जहां सेंटर खुलते वहां से निमंत्रण आता है कि यहाँ आओ सेंटर खोलो। गुजरात वाले किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, बाबा ने खुलवाया फिर निमंत्रण मिले। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। अरे ताली तो बजाओ गुजरात के लिए, बाबा ने खोला कोई कम बात है क्या। और बाबा ने कितनों को वहां पर बिठाया, दादी जानकी भी बैठी, फिर लास्ट में दादी जानकी ने सरला दीदी को यहाँ बिठा दिया। और ऐसा बिठाया तो गुजरात की फुलवाड़ी बहुत बड़ी से बड़ी कर दी। तो बाबा ने कहते गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई, सब ध्यान रखना गुजरात वाले, ब्रह्मा बाप ने ही हमें पैदा किया है और ब्रह्मा बाप की हमारे ऊपर विशेष नजर पड़ी हुई है। और गुजरात ने भी पुरुषार्थ किया, बाबा ने कराया फिर गुजरात ने भी पुरुषार्थ किया, सेंटर अच्छे खुले हैं। कितने सेंटर हैं? तो बाबा को बताया गया, बाबा 300 सेंटर उप के सेवा केंद्र है और 3000 गीता पाठशालाएं हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सेंटर किस जोन के हैं? तो फिर बाबा को बताया कि बंबई और महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं? तो उस समय उनका टर्न नहीं था, थोड़े से आए थे, आज नहीं आए हैं। गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है, अभी गुजरात वाले नंबर वन वारिस तैयार करो। सेवा बहुत है, बहुत अच्छी सेवा चल रही है और नए नए जो प्लान बनते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात से पहले शुरू करते थे, फिर भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर चलते रहे। तो बाबा कहते हैं गुजरात का विस्तार भी अच्छा है, अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है, अभी गुजरात वाले नंबर वन वारिस तैयार करो। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस हैं, वह तो है ही, लेकिन नया कोई वारिस निकाल। गुजरात में शुरू में कई वारिस निकले, कितने सेंटर खोले, बाबा ने कहा वो तो है ही, लेकिन अभी क्या करना है? नया वारिस तैयार करो। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस हैं, वह तो है ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चला एक एक तो निकालो, बाबा कहते 11 नहीं निकाल सकते, कम से कम एक एक तो निकालो, क्योंकि मालक में मन के वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होगी। अब बाबा ने जवाब दे दिया कि माला के मन के कौन बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे, तो माला तैयार करना है ना। 16108 की माला भी बनी हुई है, अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो? कौन बना सकता है? तो बाबा ने पूछा, बाबा के चलो 108 की बनाओ, आज बनाया कल फिर वो माला में से दाना अहम में आ जाता, ऊपर से नीचे छलांग लगा देता, उसको कहते नहीं वो अपनी छलांग लग जाती है। तो बाबा कहते हैं अगर अभी बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो क्या बना सकते हैं? बन सकती हैं, दादियां बताएं 108 की माला बन सकती हैं? तो बड़ी दादी ने कहा हाँ बाबा बन सकती है। अब बाबा ने कहा तो जरूर बनाना तो पड़ेगा ना, तो दादी ने कहा हाँ बाबा बन सकती है, तैयार है 108 की माला? तैयार हो गई? हाँ बाबा तैयार है। तैयार तो बैठे हैं लेकिन कौन छिपे हुए हैं, कौन सा रतन कहाँ पर, वो तो पता नहीं है ना। तैयार तो सभी हो रहे हैं, हो भी गए हैं, लेकिन उनको चुन चुन के इकट्ठा करना है। तो बाबा कहते हैं हाँ तैयार है, अच्छा लिख कर दिखाना। फिर बाबा ने दादी को काम दे दिया, 108 की माला में कौन कौन होंगे लिख करके देना दिखाना। अब लिख करके दिखाएंगे किसको मालूम पड़ेगा मेरा नाम पीछे है, तो फीलिंग आ जाएगी। साकार में भी बाबा ने कई बार माला बनाई, फिर माला बनाते थे जिसको नंबर 3 या 4 है वो उछल करके एकदम माला से बाहर आ, जैसे मेंढक होता है ना उछलता रहता। तो ऐसे कई ऐसे भी थे अहम के कारण मेरा नाम आ गया माला में तो उछलते थे, तो उछलते उछलते क्या होता। तो बाबा कहते हैं तो बाबा ने फिर वो माला बनाना बंद कर दिया था। तो बाबा ने कहा हाँ बाबा, दादी ने कहा हाँ बाबा तैयार है, अच्छा लिख करके दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा 16,000 की माला आधे तक बनी है। बाबा ने बच्चों से पूछा 16,108 की माला क्या आधे तक बनी है? आधा तो क्या उनसे ज्यादा बनी। दादी देखो सब बच्चों के फेवर लिया, दादी ने पहले का 108 की भी तैयार है, फिर दादी ने क्या क्या आधी तो क्या उससे ज्यादा बनी है। अच्छा है ना, अच्छा 16,000 की माला आधे तक बनी है। तो फिर बाबा दादी ने कहा आधा तो क्या उससे ज्यादा बनी है, अच्छा है ना, देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली। बाबा ने ये माला गुप्त रूप में बनी हुई है लेकिन प्यारी दादी ने देख ली, और तो देख नहीं सकते। अच्छा गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। अच्छा अभी आपसे सभी पूछेंगे मेरा माला में नाम है। फिर बाबा दादी को बोले आपने तो कहा ना प्यार है, फिर एक एक आएगा दादी क्या मेरा नाम है, मेरे किस नंबर पे, मेरा किस माला में नंबर है। तो दादी से पूछेंगे, दादी भी तो बहुत होशियार थी, दादी कहेंगे खुद को चेक करो कितना बनना। दादी उनको काम दे देती, ये काम किया तो आपका नाम आ ही जाएगा माला में। तो बाबा कहते हैं अच्छा अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है। अच्छा ऐसी शुभ भावना शुभ उम्मीदें त्याग कर ही लेती, वैसा शुभ भावना रखो शुभ उम्मीदें रखो। तो बाबा कहते हैं वो त्याग कर ही लेती है। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना है कि उस माला में एवर रेडी हो। अच्छा और क्या करना है? फिर बाबा के सामने कैड ग्रुप है, कैड ग्रुप है ना, ये हार्ट पेशेंट के लिए जो डॉक्टर सतीश गुप्ता उनकी ट्रेनिंग कराते रहते हैं, कैड ग्रुप हार्ट पेशेंट का आया है। अच्छा है ये भी आवाज फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। इसमें कईयों की रिजल्ट बहुत अच्छी है, मेडिटेशन एक्सरसाइज से इस प्रकार की बीमारी को ठीक किया है। तो बाबा कहते हैं बिना खर्चे मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना ये सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ, सुना है कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती ही रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए मिनट बनने वालों को भी मुबारक दे रहे हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंचे। इसके रिजल्ट भी गवर्नमेंट तक जो भेजी गई थी, तो बाबा ने कहा ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही है, और भी फैलाते रहेंगे और मेडिटेशन का महत्व बढ़ता रहेगा। बाकी बाप दादा को ये विधि पसंद है। अच्छा मीठे मीठे सिक्योरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनिए आज का वरदान। कितने वरदान बाबा ने पहले दिए, अब सुनते हैं आज का वरदान। मन के मोह से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मोह से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे। मौन व्रत बाबा ने रखवाया था, फिर क्या था, और बातों से सब फ्री हो गए थे। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकलने से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा हो। मेहनत कम और प्राप्ति है, जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में वृद्धि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में वृद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में स्थित होंगे, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अब एक इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अनेक प्रकार के व्यक्ति वैभव तथा अनेक प्रकार के वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगे और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाले हों। अनासक्त भाव के आगे दासी के रूप में, असक्त भाव के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाले होंगे। आज की हम सुनेंगे मातृश्री जी की विशेषता। और मातृश्री जी का दिन 24 तारीख है, परसों 24 तारीख को मातृश्री जी के निमित्त विशेष भोग भी रहेगा मुरली क्लास के बाद। आज 22 तारीख है और मातेश्वरी जी के अंदर क्या विशेषता थी, कई है। अनासक्त रहने के गुण द्वारा सदा हर बात में डिटैच होने की शक्ति। अनासक्त के 22 तारीख रविवार और मातेश्वरी जी का गुण, अनासक्त रहने के गुण द्वारा सदा हर बात से डिटैच रहने की शक्ति। मम्मा कभी किसी चीज में आसक्त नहीं हुई, सदा अनासक्त वृत्ति से रही, संसार में रहती हुई भी संसार से न्यारी और प्यारी रही, इसलिए वह सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु बन गई। मातेश्वरी जी तो कामधेनु की कितनी पूजा करते हैं, तो बाबा कहते क्या कारण रहा कि संसार में रहते हुए संसार से न्यारी और प्यारी रही, इसी में सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु बन गई। स्वयं हर बात से डिटैच रही, कभी कोई व्यक्ति व वस्तु ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। ऐसी हमें भी अनासक्त भाव धारण करना है। माया कितने भी चमकीले रूप में आए, हमें किसी भी रूप में आसक्त नहीं होना। माया कितने भी चमकीले रूप में आए, हमें किसी भी रूप में आसक्त नहीं रहना है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। आप सभी के लिए मौसम भी अच्छा हो गया है, ठंडा है, लेकिन जब आप अपने कमरों से निकलते हैं छाते का यूज करें और धीरे धीरे चले, और खास करके पेड़ के नीचे जब चलते हैं ना, तो पहली बरसात में ऐसा होता है पेड़ के ऊपर पत्तों का जो रस होता है वो नीचे गिरता है, वो फर्श पर गिर जाता है, तो उस समय जब दौड़ते हैं तो पांव फिसल जाता है। तो इसलिए सबको इस बात का ध्यान रखना है, माता खास करके बुजुर्ग भाई भी ध्यान देंगे कि एक तो पेड़ के नीचे पांव संभल संभल के रखे, दौड़े नहीं, बरसात में दौड़ने का काम नहीं करना है, तो और छतरी का भी एक दूसरे को सहयोग दें, क्योंकि छतरी तो लाए नहीं है, लेकिन एक दूसरे को सहयोग दें, थोड़ा टाइम रुक जाएं, और जब किचन में जाते हैं वहां पर भी बरसात के कारण पानी इधर उधर होता है, तो किसी को भी दौड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, धीरे चलो, आराम से बैठो, एक स्थान पर बैठ के सेवा करो, एक ही स्थान पर बैठ के योग करो और बाबा के साथ के अनुभव करो। ये बरसात तो अभी इन दिनों में दो चार दिन चलेगी, फिर उसके बाद जुलाई में तो बारिश की सीजन है, जुलाई और अगस्त जो है ये बरसात की सीजन है, इसलिए सभी को अपने को अच्छी तरह संभालना है। कभी कभी सुबह क्लास में आते हैं ना, तो क्लास में आने का कोई साधन नहीं है, तो फिर या तो वेट करो, या फिर गाड़ी का वेट करो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ा टाइम नीचे बैठो, जब बारिश रुकती है फिर आप धीरे धीरे क्लास में ऊपर आ सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अपने को हर प्रकार से सेफ रखना है, ये शरीर बाबा कहते संगम युग के अंदर कैसा भी है लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल है, इसकी पूरी संभाल भी करनी है, ज्ञान योग और शरीर के स्वास्थ्य का भी बैलेंस रखना है। अच्छा सब ठीक है, जो सब ठीक है बताओ बाबा को, ठीक है ना सब, आराम से अभी भी जब जाएंगे क्लास के बाहर जाएंगे तो दो मिनट वेट करके आराम से जाने का, ऐसा नहीं दौड़ते दौड़ते जाओ, सीढ़ियां भी हैं, काम भी चल रहा है, इसलिए ध्यान से ही जाना है। अच्छा अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं, ओम शांति।